कुमार स्वामी को नौकरी मिली और साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति हुई। कॉलेज में वह तेलुगु का अध्यापक बना। वेतन था 100 रुपये प्रतिमास। उसने तेलुगु में बीए की परीक्षा दी थी। इस बार एमए में बैठना चाहता था। उसका समाज सुधारक ढंग का विवाह कॉलेज में एमए की उपाधि के समान प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ। उसने अपने बच्चे का नाम धर्माराव रखा। श्यामला बच्चे को गुरुजी पुकारते थे। एक दिन कुमार स्वामी ने अपने बच्चे के बारे में धर्माराव से कहा, मास्टर जी, हमारे लाल को ऐसा वैसा न समझिए। उधर चक्रवर्ती है और इधर यह है। धर्माराव, यह कहाँ का चक्रवर्ती है? कुमार स्वामी, हमारे लाल को भी रोजी अवश्य मिलेगी, हम देखेंगे। श्यामला, चक्रवर्ती पर आपका गुस्सा अभी तक नहीं उतरा? 4-5 दिन मैंने उनसे बातें क्या की, आपने उनसे इतना वैर बढ़ा लिया। धर्मराव, अब चक्रवर्ती क्या कर रहा है? कुमार स्वामी, अभी कहा ना कि पिता की दी हुई रोजी खा रहा है। श्यामला, आप तो कहते थे कि उधर चक्रवर्ती है और इधर यह है, इसका क्या मतलब है? कुमार स्वामी, मतलब यह है कि उस चक्रवर्ती से हमारा बच्चा ही तंडावाद करेगा, अब मास्टर जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्माराव, नदी पार करके नाव जला रहे हो? एक दिन मंगम्मा और कुमार स्वामी बैठे बातें कर रहे थे। मंगम्मा पूछ रही थी, 125 रुपये प्रतिमास कमाते हो, यह 100 रुपया क्या कर रहे हो? कुमार स्वामी, पुराने कर्ज चुका रहा हूँ। मंगम्मा, फिर मेरे कर्ज का क्या करोगे? कुमार स्वामी, आपने ही तो कहा था कि वह कर्ज नहीं है। मंगम्मा, 400 रुपये का कर्ज यूं ही उड़ा दोगे? कुमार स्वामी, बुद्धूपन किसने किया है? यदि आपने मुझसे नोट लिखा लेती तो पैसे अवश्य लौटा देता, अब मेरा मन नहीं करता। मंगम्मा, कैसे करेगा तुम्हारा मन? तुम्हारे बच्चे के लिए सोने की जंजीर बना दूं तो मानेगा? कुमार स्वामी, सचमुच बड़े जमींदार भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। किसी रिश्तेदार ने ऐसी बात नहीं की, पर आप अपने वचन से मुकर न जाइएगा। हाँ, वचन भंग नहीं करना चाहिए। मंगम्मा, तुम और तुम्हारा बच्चा बड़े भोले भाले हो, मुंह में उंगली देने पर काटना भी नहीं जानते। कुमार स्वामी, बच्चे के दांत निकल आए हैं, उसी से जल रही हैं आप? उस दिन संध्या समय छोटे धर्मराव के गले में सोने का हार चमकने लगा। कुमार स्वामी बोला, आप हमारे बच्चे पर अनुरक्त हुई हैं क्या? हमारा बच्चा नल है, आप दमयंती हैं। वह अभिनव नल है, आप अभिनव दमयंती। कलयुग में दमयंती को पतिव्रता होने की आवश्यकता नहीं। आप में और हमारे बच्चे में 25 बरस का अंतर तो होगा ही, यह अंतर हमारे नवीन सिद्धांत के अनुरूप है। मंगम्मा, तुम्हें अब बड़ा आदमी बनना चाहिए, भोड़ा व्यवहार करोगे तो नौकरी जाती रहेगी। कुमार स्वामी, कॉलेज से केशव जी का निष्क्रमण हो गया है, अब शिक्षा प्रणाली में पहले की तरह कड़ाई नहीं रहेगी। मंगम्मा, अब तो वह पहले से भी बुरी होगी। पुराना ढंग भीतर से ढीला था, बाहर से कड़ा लगता था। आजकल का ढंग भीतर से कड़ा है, बाहर से ढीला लगता है। इतने में धर्माराव आया। कुमार स्वामी फिर बच्चे को ले आया और धर्माराव को दिखाने लगा। धर्माराव बोला, क्या तुम्हारे बेटा कोई नित नया बेटा है जो बार बार लाकर दिखाते हो? कुमार स्वामी, यह बात नहीं मास्टर जी, मैंने मंगम्मा को 400 रुपये कर्ज दिए थे। मैंने कहा, असल न सही ब्याज तो दे दो, बेचारी बड़ी गरीब है ना, खाने तक के लिए तरस रही है, इसीलिए यह सोने का हार ब्याज के रूप में मंगम्मा ने दिया है, यही आपको दिखाना चाहता था। मंगम्मा, अब असल नहीं दे सकूंगी, इस ब्याज से ही संतुष्ट हो जाओ। कुमार स्वामी, आपने कहा था कि मेरे बच्चे से आप अपनी भैंस का ब्याह कराएंगी। हाँ, भूल गया मास्टर जी, मेरे बच्चे का ब्याह तय हुआ है, कब रचाएं? धर्माराव, अब ब्याह रचाओगे तो बाल विवाह कहलाएगा, सारड़ा कानून के विरुद्ध पड़ेगा। कुमार स्वामी, सारड़ा कानून के अनुसार यदि दूल्हा छोटा हो तो कोई बाधा नहीं पड़ती। यहाँ तो दुल्हन 25 बरस की है, दोनों की उम्र का औसत लेने पर बाल विवाह नहीं होगा। मंगम्मा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, ऐसी बुद्धिमानी इनमें नहीं। कुमार स्वामी, क्यों नहीं, हमारे दोनों के लिए असल अपनी जगह है और ब्याज वसूल हो रहा है। श्यामला, आपको हो रहा होगा, पर इन्हें क्या वसूल हो रहा है? अच्छा, यह बात है। कुमार स्वामी, शायद चक्रवर्ती की याद आ गई। श्यामला, और कब तक ये उलाहने देते रहेंगे? यह तो बताइए, बाली कैसा है? सुग्रीव को बुला रहा है। सुग्रीव सो रहा है। अपनी तारा को उठा ले जाने वाले बाली से बदला चुकाने के लिए श्री रामचंद्र जैसे प्रत्यगात्मा से सुषुप्त अवस्था में विचार विनिमय कर रहा है। तुम्हारा यह वेदांत मेरी समझ में नहीं आता, कम से कम इसका पूर्व भाव तो आया होगा। कभी दमयंती कहते हो, कभी तारा कहते हो, जोजी में आए कह देते हो, क्या अवतार नहीं बदला करते? मंगम्मा, जब से तुम्हें नौकरी मिली है तुम बहुत उच्छृंखल हुए जा रहे हो। कुमार स्वामी, स्त्री कुछ भी कहती रहे उसमें कोई दोष नहीं, पर पुरुष एक अक्षर भी कह दे तो स्त्री उस पर बरस पड़ती है। तुम ही देखो, रुक्मिणी ने अपने प्रिय कृष्ण को संदेशा भेजा। इस पर लोग मानने लगे कि लक्ष्मी देवी ने विष्णु भगवान से विवाह किया। रुक्मिणी के पिता भीष्मक और भाई रुक्मिणी ने वचन के कारण शिशुपाल भी रुक्मिणी पर अनुरक्त हुआ, पर उस बेचारे को लोगों ने द्रोही ठहराया। यह है जग की रीत। स्त्री की इच्छा कहीं प्रकट नहीं होती उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसकी इच्छा न हो तो रसाभास हो जाता है। काव्यों में केवल रसाभास होता है, पर संसार में, मंगम्मा, संसार में क्या होता है? कुमार स्वामी, पूछती हो कि क्या होता है? लाठियों से पूजा होती है, कभी कभी सिर फूट जाते हैं, खून होते हैं। स्त्री के कारण यह संसार इतना बिगड़ गया है कि हत्याएं हो रही हैं। मंगम्मा चुपचाप लौट गई। उसके लौटने का कारण कुमार स्वामी की समझ में न आया। मंगम्मा के घर लौटते ही बाली ने किचकिच आवाज दी। चंगल राव को बुलाकर मंगम्मा ने पूछा, बाली को कॉफ़ी दी? चंगल राव बोला, कॉफ़ी ले आने तक ठंड हो गई। मैं ज़बरदस्ती कॉफ़ी उसके मुंह के पास रख दी। उसने गुस्से से मेरे सारे शरीर को खनोच कर लहूलुहान कर दिया और कहकहा लगाने लगा। तब मैंने कहा, तुम्हें कॉफ़ी दूंगा ही नहीं। मंगम्मा बोली, तुम बड़े अच्छे हो, ज़रा कॉफ़ी गर्म करके ले आओ। मंगम्मा भीतर जाकर लेट गई, सोचने लगी, कुमार स्वामी मुझे कभी उलाहने नहीं देता, पर आज यह बात मेरे मन में क्यों चुभ गई? मैंने लाज शर्म छोड़ दी है, फिर किसी पर भी मुझे झल्लाना नहीं चाहिए। झल्ला कर करूँगी भी क्या? मैं तो बेलगाम सी बनी हूँ, नहीं तो इस गांव में नाटक में काम करने का मुझे साहस कैसे होता? जीवन में भूल एक बार होती है, पर अंत तक उससे पीछा नहीं छूटता। मेरा पति बेचारा जोशी मुझसे कितना प्रेम करता था। वह सुंदर नहीं था, मैं सुंदरी हूँ। मुझे पाकर उस बेचारे के पांव धरती पर न टिकते थे। रामेश्वरम ने मुझ पर जो अन्याय किया उसका उसे क्या बदला मिलेगा भला? आज मैं 60-70 हज़ार की जायदाद हस्तगत करके महारानी बनी बैठी हूँ। बड़ा बंगला है जिससे 40 रुपये किराया आ रहा है। सिनेमा से कम महीने में 1000 रुपये की बचत हो रही है। थिएटर के किराए के 100 रुपये, रोशनी के 25, फर्नीचर के 15, मेरे खुद की आमदनी 116, ताश खेलते समय रोशनी का खर्च, ताश खरीदने का खर्च, घर का भाड़ा, इस प्रकार कई रास्तों से पैसा आ रहा है। अब मुझे सुख ही सुख है, परंतु लगता है कि भगवान कभी न कभी मेरा सिर अवश्य फोड़ेगा। मंगम्मा ने बक्सा खोला और जोशी का एक फोटो निकालकर मेज पर रख दिया। आंगन से पारिजात के फूल से आई और ले आई और उनकी माला गूंथ कर तस्वीर को पहनाई। संध्या समय कुमार स्वामी आया। उसने बाली को धमकाया। बाली खंभे से बंधा था, वह पांव घसीटता उछल कूद मचाता हुआ शोर करने लगा। कुमार स्वामी ने घास के तिनके से बाली को मारने का अभिनय किया। बाली इधर उधर घूमकर दौड़ धूप मचाता हुआ उछलता कूदता अपनी बेबसी प्रकट करने लगा। भीतर से मंगम्मा आई और कुमार स्वामी को देख कर कहने लगी, तुम दिनों दिन बच्चा बनते जा रहे हो, किस कमबख्त ने तुम्हें नौकरी दी है? कुमार स्वामी, गांव भर में जिसे देखो मेरी नौकरी से चलता है, कहता है कि गरीब ने सिर मुड़ाया और ओले बरसने लगे। मुश्किल से मुझे एक नौकरी क्या मिली, बस गांव भर की डायनियों से बिगाड़ने की कोशिशें कर रही हैं। मंगम्मा, नौकरी के बिना जी नहीं सकोगे क्या? कुमार स्वामी, कैसे जीऊँगा, सास का काम तमाम हो चुका है, जितनी जायदाद है उतना कर्ज चढ़ गया है, बाकी कुछ नहीं। ले देकर एक घर और 10 एकड़ जमीन बेटी के नाम है, मैं उन्हें लेकर क्या करूँगा, साले के नाम कर दूंगा। मुझे कौन सी कमी है, इस नौकरी से टिकने का भी भरोसा नहीं। मंगम्मा, क्यों नहीं है? कुमार स्वामी, इसलिए कि मैंने धर्माराव से पाठ सीखकर बड़ा अपराध किया है। मंगम्मा, क्या तुम भी धुआंधार भाषण करने लगे हो? कुमार स्वामी, गाय खेत में चरेगी तो बछड़ा मेड़ पर क्यों चढ़ने लगा? खैर रहने दो, यह तो बताओ आज बाली महाराज गुस्से में क्यों है? मंगम्मा, उसकी कॉफ़ी ठंडी पड़ गई है, उसे जहाज से उतरे 1 हफ्ता ही तो हुआ है, यह आने के बाद उसे बेड टी नहीं मिलती, कॉफ़ी ठंडी पड़ जाती है। कुमार स्वामी ने बाली की जंजीर खोल दी और उसे भीतर ले गया। बाली मंगम्मा के पास आश्रय लेने लगा। कुमार स्वामी, इस निगोड़े को नहीं मालूम कि मैं इसका चाचा हूँ, मुझे देख कर घबराता क्यों है? मंगम्मा, हाँ हाँ तुम सौतेले बाप हो न? कुमार स्वामी, आज के युग में सौतेली माताएं ही अधिक हैं, पुराने समय में सौतेले बाप अधिक होते थे। बाली, सुग्रीव, केसरी, वासुदेव, ये सब सौतेले पिताओं के उदाहरण हैं। मैं सोचता हूँ कि पूर्व काल में देश भर में मलयाली नियम था, जायदाद स्त्री की होती थी, स्त्रियां चाहे जितने पतियों से विवाह कर सकती थीं। मंगम्मा, तुम घबराते क्यों हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? तुम तो अनुसंधान विभाग में पहुंच गए हो, अब तुम्हें डॉक्टरेट मिलेगी। कुमार स्वामी, आज के युग में पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं। हमारे पास तेलुगु के कई MA मौजूद हैं, परंतु किसी कविता का अर्थ समझाने को कहो तो वे नहीं समझा पाएंगे। उनसे किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कक्षा में विद्यार्थी अर्थ पूछें तो मास्टर जी कहते हैं कल बताऊंगा। आजकल जहां देखो अनुसंधान ही अनुसंधान चल रहा है। हमारी निजी सूझबूझ को समाप्त करने के लिए अनुसंधान के नाम पर बाल की खाल खींची जा रही है। मंगम्मा, तुम सच कहते हो, परंतु ऐसी धूर्त बातें करोगे तो नौकरी कैसे टिकेगी? इस पर असभ्य बातें भी कर रहे हो। कुमार स्वामी, बालों की बात असभ्य है? कुमार स्वामी गाने लगा। मंगम्मा बोली, अब जरा गाना बंद करके कॉफ़ी गर्म करोगे क्या? कुमार स्वामी, दूध है? मंगम्मा, हाँ है। कुमार स्वामी, चंगल राव क्या कर रहा है? कॉफ़ी गर्म करने के लिए उसे क्यों नहीं कहती? मंगम्मा, वह राजबंधु सुषेण है। बाली और सुषेण केवल खाना जानते हैं, सेवा करना नहीं। कुमार स्वामी, कहावत है किसी ने बैल बराबर कुत्ता पाल रखा था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर खुद ही भौंका करता था। तुम स्त्री हो सो तुम्हारे रहते हुए मैं क्यों कॉफ़ी बनाऊं? मंगम्मा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं कुत्ता हूं और तुम सरदार? कुमार स्वामी हंसकर, तुम्हारे घर में पालतू बंदर हैं, पालतू बिल्लियाँ भी हैं, चंगल राव के रूप में आदि वराह भी मौजूद हैं। संसार के सही नियमों के पास कुत्ते होते हैं, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? रेल का खर्च दो तो मैं बंगलौर से एक अच्छा कुत्ता ला दूंगा। हमारे DMO लाए हैं, सुना है उनके कुत्ते की कीमत 600 रुपये है। हम 1600 का कुत्ता ले आएंगे। मंगम्मा, पैसों की आस अभी तुम्हारे मन से गई नहीं? कुमार स्वामी, जब तक तुम सामने रहोगी मेरी आस नहीं जाएगी। 70,000 रुपये क्या करोगी? मुझे अपना बंगला और 10,000 रुपये दे दो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मंगम्मा, काफ़ी हैं, और 10,000 दूंगी, ले लो। कुमार स्वामी, रामेश्वरम फिर से जीवित होकर आए तब ले लूँगा। मंगम्मा, तब क्यों? कुमार स्वामी, वह भूत बनकर मुझे काट खाने लगे तब क्या होगा? मंगम्मा, तुम्हें काट सकता है पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में बाली मंगम्मा के कंधे पर आ बैठा। कुमार स्वामी, बंदर के ऊपर बंदर? मंगम्मा, क्या कहते हो? कुमार स्वामी, कन्नड़ में मंगा का अर्थ है बंदर। मंगम्मा, तुम बंगले और 10,000 रुपये से वंचित हो जाओगे। कुमार स्वामी, अभी अभी तो 20,000 कह रही थी, क्षण भर में दो बातें करने लगी। खैर, तुम बिगड़ती क्यों हो? मन सचमुच बंदर है, आदि शंकर ने कहा है। सदा मोहाट्टाव्यम चरति युवती नाम कुछ गिराओ, नटत्याशा शाखा स्वटती झटती स्वैरमभिधा, कपालिन भिक्षो मे हृदय कपि, मत्यंत चपलम दृढ़म भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनम कुरु विभु। मंगम्मा आंसू बहाने लगी। कुमार स्वामी ने पूछा, क्या बात है, आंसू क्यों बहा रही हो? मंगम्मा बोली, इस कमबख्त बंदर ने मेरी आंखों में धूल डाल दी। कुमार स्वामी ने फिर पूछा, खैर रहने दो, बताओ यह तस्वीर किसकी है? मंगम्मा चुप हो गई। कुमार स्वामी ने उसकी ओर देखा। मंगम्मा ने जबरदस्ती बंदर को उतारा और खुद कुर्सी पर बैठ गई। उसके मुख पर विषाद की एक रेखा झलकी। कुमार स्वामी भीतर गया और स्टोव सुलगाकर कॉफ़ी बनाने लगा। बाली उसके पास जा पहुंचा। कुमार स्वामी ने उसे फटकारा, निगोड़े चल निकल, तू त्रेता युग का प्राणी है, तुझे कॉफ़ी की क्या ज़रूरत? बाली ने किचकिच आवाज़ की, मानो यह कह रहा हो कि रामायण में यद्यपि वाल्मीकि ने नहीं लिखा, तथापि अनुसंधान से बात सिद्ध होती है कि लंका में चाय के बगीचे प्राचीन काल में विद्यमान थे। इतने में चंगल राव आ गया। कुमार स्वामी, भैया तुम तीसरे अवतार हो, जरा इस बाली को बाहर ले जाओ, सातवें और तीसरे अवतार में नाता जोड़ कर देखें। बाली ने कुमार स्वामी को नहीं छोड़ा। कॉफ़ी बन गई। कुमार स्वामी ने मंगम्मा को भीतर बुलाया। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। बाली को ही कॉफ़ी में हिस्सा दिया गया। उसने अपना हिस्सा घटाघट समाप्त किया और मंगम्मा के हिस्से पर आक्रमण करने लगा। कुमार स्वामी, यह बाली है भी धूर्त, सुग्रीव की पत्नी को इसी ने हड़प लिया, अब तुम्हारी कॉफ़ी पर आक्रमण कर रहा है। मंगम्मा, तारा ही उसकी बनी है तो तारा की कॉफ़ी पर उसका अधिकार क्यों ना होगा? कुमार स्वामी, यह तो बताओ मेज़ पर तस्वीर किसकी रखी है? मंगम्मा, तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हो। कुमार स्वामी, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, तुम नाटक खेलती हो। मंगम्मा, आज इतनी जल्दी कॉलेज बंद हो गया? कुमार स्वामी, हमारे इटसन साहब के बदले तुम प्रिंसिपल नहीं हुई। वह साहब बेचारा तभी बुलाता है जब कोई काम हो, इसलिए कहता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं देना चाहिए। यहाँ के ट्रेनिंग स्कूल की अध्यक्ष को तुमने नहीं देखा, अध्यापिकाओं के प्राण खाए जा रही है। मंगम्मा ब्रह्मचारिणी है ना? कुमार स्वामी, वह तस्वीर किसकी है? मंगम्मा, कल बताऊंगी। कुमार स्वामी, कल गुरुग्रह कर्कट राशि में आने वाला है क्या? मंगम्मा, जिनकी वह तस्वीर है उनका नाम है जोशी। कुमार स्वामी ने कहा, ओहो यह बात है। वर्षा के उपजाए हुए तृण कन्याओं की चोटियों में शरद ऋतु ने फूल गूंथे। कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के लिखे हुए पूर्व एवं पश्चिम ग्रंथ से कुमार स्वामी पाठ पढ़ा रहा था। स्वामी जी ने पाश्चात्य सभ्यता के जिन पद्धतियों की आलोचना की थी उन पर कुमार स्वामी सविस्तार व्याख्यान दे रहा था। कतिपय ईसाई विद्यार्थी उन दिनों अपने आप को विलायती साहब समझते थे। उनको भारत पर गर्व नहीं था, हूण देश और पाश्चात्य सभ्यता पर ही वे मुग्ध थे। कुमार स्वामी का व्याख्यान सुनकर ऐसे कुछ विद्यार्थियों को बुरा लगा और वे सब कक्षा से उठकर चले गए। कुमार स्वामी को अध्यापक बने केवल 5 महीने हुए थे। वह प्रतिदिन पाश्चात्य सभ्यता की कड़ी आलोचना और भारतीय सभ्यता का प्रबल समर्थन करता था। ईसाई धर्म के विषय में वह कुछ न कहता। विद्यार्थी उसकी राय पूछते तो कहता, मैं नहीं जानता। फिर भी कुछ ईसाई विद्यार्थियों ने इटसन साहब से शिकायत कर दी कि कुमार स्वामी ईसाई धर्म की निंदा कर रहा है। कुमार स्वामी ने शिकायत की कि पाठ पढ़ते समय कुछ ईसाई विद्यार्थी बाहर चले गए। इटसन साहब ने कहा, जब विद्यार्थियों के धर्म के विरुद्ध अध्यापक व्याख्यान दें तो उनका कक्षा से निकल जाना ही ठीक है। कुमार स्वामी मन ही मन सोचने लगा, हाँ ठीक है, अपने धर्म के विरुद्ध तुम्हारी पढ़ाई पढ़ना, तुम्हारे कॉलेज में शरीक होना, यह हमारी मूर्खता है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुमने यह कॉलेज अपने धर्म प्रचार के लिए खरीदा है। हम सब भारतवासी हैं, हमें नौकरी चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम में सचमुच हिंदू कौन है? हमारे लिबास पाश्चात्य बन गए हैं, फिर यह दुराभिमान क्यों? प्रिंसिपल के समर्थन पर ही विश्वविद्यालय के अधिकारी निर्णय लेते हैं। हम तो रोजगार के लिए आए हैं, जब सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम अपमान सहन करने की शक्ति तो होनी ही चाहिए। अध्यापकों के कमरे में कुमार स्वामी बैठा था। बड़े दिन की छुट्टियां आ रही थीं, परीक्षा समाप्त हुई, छुट्टियों में परीक्षा पत्रों की जांच करनी है। एक अध्यापक बोला, कॉलेज की परीक्षा में भी परीक्षा पत्रों की जांच के लिए पैसे देना उचित होगा? विश्वविद्यालय की परीक्षा में देते हैं। कुमार स्वामी, दुराशा की सीमा क्या है? नए आने वाले विद्यार्थी समूचा मेरू पर्वत निकल जाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी पैसे क्यों नहीं दिए जाएं? 100 विद्यार्थियों में 95 गरीब होते हैं, उन्हें खाने तक को नसीब नहीं। मुझे अपनी पढ़ाई के दुर्दिन अच्छी तरह याद हैं। हाथ में कौड़ी नहीं, पुरखों की कमाई हुई जायदादें और पत्नी के गहने बेचकर विद्यार्थी अपनी फीस अदा कर रहे हैं। इस पढ़ाई के कई गृहस्थियाँ चौपट हो रही हैं। आर्थिक कठिनाई के नाम पर अध्यापकों के वेतन में कटौती होती है, परंतु विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में कटौती क्यों नहीं होती? आमदनी दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। 30-30, 40-40 रुपये परीक्षा फीस लेते हैं। परीक्षा पत्र जांचने वाले सब अध्यापक ही तो हैं, उन्हें छुट्टियों का वेतन भी तो मिलता है, छुट्टियों में उन्हें क्या काम रहता है? परीक्षा पत्र जांचने के लिए उन्हें पैसे क्यों दिए जाएं? 1 रुपये के कागज से परीक्षा समाप्त हो सकती है, फिर 40 रुपये परीक्षा शुल्क क्यों? चीफ सुपरिटेंडेंट को 10 रुपये, अन्य लोगों को 4-4 रुपये, पत्र जांचने वाले को 2-2 रुपये, इसी प्रकार सबकी दक्षिणा निश्चित है। बेचारा विद्यार्थी जायदादें बेच बेच कर, पत्नी का मंगल सूत्र बेच कर जो पैसा लाता है उसे 2-2, 3-3 सौ वेतन पाने वाले अध्यापक क्यों हड़प लें? इतने अधिक वेतन की आवश्यकता ही क्या है? जो व्यक्ति 100 रुपये से अधिक वेतन लेता है वह देश का शत्रु है। गांधी जी ने यही कहा है, स्वराज्य आने के बाद 500 से अधिक वेतन किसी का नहीं रहेगा। हमें इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमारा वेतन 400 रुपये माहवार आ रहा है। हमें तो यह सोचना चाहिए कि कैसे और कहां से आ रहा है। अन्य अध्यापकों को कुमार स्वामी की ये बातें बुरी लगीं। छुट्टियां शुरू हुईं। एक दिन कुमार स्वामी धर्माराव के घर गया। बोला, मास्टर जी, हमारी तरफ तो आजकल आप फटक कर भी नहीं देखते। धर्माराव, तुम अब मुलाजिम हो, पहले की तरह तुमसे बात करना उचित होगा कि नहीं? इस दुविधा के कारण मैं उधर नहीं गया। कुमार स्वामी, जरा मेरी आंखें तो देखिए, भावों के नीचे हैं कि नहीं? धर्माराव, सिर पर पैदा होने वाली आंखें नहीं हैं, वे और होती हैं। जो व्यक्ति शेर के सिर का मुखौटा लगाता है उसकी आंखें बाहर वालों को दिखाई नहीं देती, तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं हैं। कुमार स्वामी, शायद वे आंखें पगड़ी से सटी रहती हैं, अब मेरे सिर पर पगड़ी नहीं है। धर्माराव, अपने कॉलेज की खबरें सुनाओ। कुमार स्वामी, क्या रखा है सुनाने को? धर्माराव, वहाँ अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। धर्माराव, यह क्या कहते हो? मैं तो वहाँ अध्यापक नहीं हूँ। कुमार स्वामी, तस्वीर ही अयोग्य है तो वास्तविक व्यक्ति कितना अधिक अयोग्य होगा? धर्माराव, बात क्या है, ठीक ठीक बताओ। कुमार स्वामी, हमारे विचार वहाँ सबको खलते हैं। कॉलेज में नम्रता का अर्थ है उनकी हाँ में हाँ मिलाना, अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ न बोलना, आचार व्यवहारों की उचित आलोचना न करना। सचमुच मैंने उनके धर्म पर कोई टीका नहीं की, फिर भी उन सबको मुझसे बड़ा द्वेष हो गया है। बात बात पर वे पूछते हैं कि भगवान एक है, फिर तुम हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं? इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूँ? धर्माराव, भगवान एक वचनी शब्द है। इस शब्द से ही पता चलता है कि भगवान एक है। कुमार स्वामी, ऐसा मैं कहूँगा तो उनकी समझ में नहीं आएगा, आपके शब्द सिद्धांत से परिचित नहीं है। धर्माराव, मैंने सिद्धांत नहीं बताया, मानी हुई बात है कि अर्थ के बिना शब्द नहीं, अतएव शब्द का अर्थ ही तत्व है। उस अर्थ का ठीक ठीक निर्णय हो जाए तो फिर अड़चन नहीं रहती। अंग्रेजी भाषा में परमार्थ का विषय बोध कराने वाले स्पष्ट अर्थयुक्त शब्द नहीं है। वहाँ शब्द की उत्पत्ति का और प्रयोग में उसके अर्थ का कोई संबंध नहीं होता। कुमार स्वामी, वह सब ठीक है, पर हम अनेक देवताओं को मानते हैं न, उन सब का समन्वय कैसे हो? धर्मराव, इतनी सी बात तुम नहीं जानते। कुमार स्वामी, आपने मुझे केवल तेलुगु पढ़ाई, ये बातें कभी नहीं बताईं। धर्मराव, आज ही तो मुझसे पूछ रहे हो, नहीं तो तुम्हें मंगम्मा की सेवा से फुर्सत ही कहाँ है? कुमार स्वामी, पहले कभी मंगम्मा ने पाप अवश्य किया होगा, पर अब वह बड़ी अच्छी बन गई है। मास्टर जी, हर एकादशी को उपवास करती है, किसी याचक को ना नहीं कहती। धर्मराव, उसके पास याचक आ रहे हैं क्या? कुमार स्वामी, अब तो ब्राह्मण भी आ रहे हैं। मंगम्मा प्रतिदिन स्नान करती है, जप करती है, तब कहीं भोजन करती है। धर्माराव, चंडालों के मोहल्ले में यह यज्ञ करने के बराबर है। कुमार स्वामी, आप गांधी जी का हरिजन उद्धार नहीं मानते, आप कट्टर सनातनी हैं, हरिजनोद्धार की बात आपको माननी ही पड़ेगी। धर्माराव, मैंने कौन सी बात नहीं मानी? वे लोग बेचारे छोटे छोटे झोंपड़ों में रहते हैं, यदि देश के नेता उनके लिए घर बनवा दें, उनकी बाजारों को साफ सुथरा रखने का प्रबंध करें, तो मैं क्यों मना करूँगा? हरिजनों के लिए कुएं खुदवाने वाला कोई दाता हो तो मैं कदापि मना नहीं करूँगा। हरिजन प्रतिदिन स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, उन्हें खाना मिले, तो क्या मुझे कोई आपत्ति होगी? सच तो यह है कि यह सब काम कोई नहीं करता। अपनी तिजोरी से हरिजनों के उद्धार के लिए फूटी कौड़ी निकालने वाला कोई नहीं। हाँ, मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का प्रश्न उपस्थित हो तो सभी नेतागण एक बारगी टूट पड़ते हैं। क्यों भला? इसीलिए न कि इस कार्यक्रम में उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। भले ही गंदगी के साथ लोगों के आने से मंदिर अपवित्र हो जाए, भगवान अपवित्र हो जाए उनकी बला से। कुमार स्वामी, मंदिर में भगवान अपवित्र क्यों होते हैं? धर्माराव, मुझे वितंडावाद न कहो तो एक बात पूछूं, पराये पुरुष के संगम से पत्नी अपवित्र कैसे हो जाती है? उसका परित्याग क्यों किया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे मन में है, संस्कार में है। इसी प्रकार कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष विषय होते हैं जिनके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, उन्हें यथावत मान लेना चाहिए। कुमार स्वामी, मंदिर के पुजारियों और ब्राह्मणों में ऐसे कौन से अधिक गुण होते हैं जो हरिजनों में नहीं होते? धर्माराव, यह प्रश्न वर्ण से संबंध रखता है। वर्ण कल्पित हैं या सहज हैं? पशुओं में गाय, भैंस, बकरी आदि की तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रश्न के पीछे एक अर्थ है। गाय एक तेज जानवर है, भैंस में मंदता होती है। मोटर गाड़ी आ जाए तो भैंस रास्ते से नहीं हटती। अब जरा सोचो, भैंस के स्वभाव में यह मंदता है, उसके रक्त में है। द्रव्य के अनुसार गुण आता है, गुण के अनुसार द्रव्य बनता है। दोनों का अनिवार्य संबंध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को देखते ही पहचाना जा सकता है, लिवास से नहीं। लिवास तो आजकल सबका एक सा है, कहीं कहीं पहचानना कठिन हो जाता है। सब मनुष्यों को एक मानना सब पशुओं को एक मानने के समान है। गाय का गोबर घर लीपने के काम आता है, गोमूत्र दीवारों पर छिड़कने से बिच्छू आदि मर जाते हैं। भैंस के मूत्र में यह गुण नहीं होता, यह अंतर प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार भिन्न वर्णों में अंतर होता है। कुमार स्वामी, मुख लक्षणों में, हाव भाव में, लिवास में, चाल ढाल में अंतर हो सकता है, परंतु प्रधान विषयों में अंतर कैसे होगा? धर्माराव, प्रधान विषयों से तुम्हारा क्या मतलब है? कुमार स्वामी, प्रधान विषय है सबका मनुष्य होना। धर्माराव, मैंने कब कहा कि सब मनुष्य नहीं है? कुमार स्वामी, आपने नहीं कहा तो फिर अंतर कुछ नहीं रहता। धर्माराव, मैंने कई अंतर दिखाए हैं। कुमार स्वामी, मेरी बात आप नहीं समझे। धर्माराव, तुम्हें प्रश्न पूछना नहीं आया, तुम्हारा प्रश्न यह है कि आत्मा में क्या अंतर है? कुमार स्वामी, हाँ हाँ, आत्मा में क्या अंतर है? धर्माराव, आत्मा में अंतर नहीं, जीव में अंतर है। महासागर से लेकर कुएं तक सर्वत्र जल ही जल भरा हुआ है। उसमें जो जल स्वरूप है और जो द्रवत्व का गुण है वह सामान्य लक्षण है, परंतु उस जल में कई कई प्रकार क्यों हैं? ये प्रकार उपाधि के आश्रित हैं। उपाधि के भ्रम से जल समुद्र बन जाता है और जल ही छोटा चश्मा बन जाता है। उपाधि के अनुसार जल की शक्ति ही बदल जाती है। कृष्णा जैसी महानदी में अनेक शहरों की मलिनता धुल जाती है। सागर में ही मलिनता का भय नहीं होता, परंतु एक छोटी तलैया के पानी में एक छोर पर जानवर लौट रहे हों तो दूसरे छोर का पानी पीने के लिए योग्य नहीं रह जाता। देख लिया, ये सब अंतर किसने पैदा किए? स्वयं जल ने भिन्न भिन्न प्रदेशों के आश्रय के अनुसार ये अंतर पैदा कर लिए हैं। इसी प्रकार आत्मा भी भिन्न भिन्न उपाधियों के आश्रय से भिन्नता प्रकट करती हैं। इन उपाधियों के गुण दोषों के संक्रमण से जीव भी भिन्न बन जाता है। कुमार स्वामी, सागर, नदी, कुएं आदि के पानी में जो अंतर है वह दृश्यमान है, मनुष्यों में जो अंतर है वह दृश्यमान नहीं है। धर्मारा, क्यों नहीं है भला? जो विवेकी है, सुशिक्षित है, वह अधिकार चला रहा है। जो अविवेकी है, अशिक्षित है, उसकी गिनती शासित प्रजा में हो रही है। उन अधिकारियों में कितने भेद हैं, शासित प्रजा में भी कितने भेद हैं। कुमार स्वामी, ये सब भेद मनुष्यों के बनाए हुए हैं। धर्माराव, यही तो भूल है। जिसे उपाधि कहते हैं वह यदृच्छाया है या नियमबद्ध। रूस के देखो, वह कहता है कि वहाँ सभी अंतर समाप्त कर दिए गए हैं, परंतु क्या वहाँ के समाज में कोई अंतर है ही नहीं? वहाँ मंत्री नहीं, सेनानी नहीं, डॉक्टर नहीं। शायद तुम कहोगे कि वे सब लोग आपस में कोई भेदभाव नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या वहाँ का मंत्री मंत्री पद के पालन में भेदभाव नहीं करता? अपनी निजी बातों में देशवासियों के प्रति उसका सामान्य भाव हो सकता है, पर प्रशासनिक अधिकार संबंधी बातों में विशेष भाव होता है। यह अंतर है कि नहीं? उसी प्रकार सब मनुष्यों के प्रति सामान्य भाव हो सकता है, परंतु भिन्न वर्णों में उनके धर्मों की भिन्नता के अनुसार विशेष भाव अनिवार्य रूप से आ जाता है। हमारी नंगी आँखों को जिस स्पष्टता से धन दिखाई देता है, उसी स्पष्टता से दिव्य विषय दिखाई नहीं देते। उनके परस्पर भेदों का हम स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकते, इसी से हम उन्हें कल्पित समझ लेते हैं। यह हमारा दोष नहीं, सिर पर जो अंधी आधुनिकता का भूत सवार है, उसी के कारण हम ऐसा समझ बैठते हैं। आज तक जो अंतर है उन्हें समाप्त करने के लिए हम नया मार्ग खोज निकालते हैं, परंतु ध्यान से देखो तो उस नए मार्ग में भी फिर से अंतर ही अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। चुनाव में वर्णों के बदले पार्टियां उत्पन्न हुई। कोई अतिवादी है, कोई मितवादी है, कोई स्वतंत्र है। इसी प्रकार पहले के भेदों की अपेक्षा ये नए भेद ही अधिक भयानक बन गए हैं। गर्मा गर्मी में कुछ महसूस नहीं होता। होटल का खाना तुमने खाया ही होगा। गर्मा गर्म हो तो थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन ठंडा पड़ने पर खाओ तो उल्टी होने को आती है। कुमार स्वामी, हमारे अनेक देवताओं के अस्तित्व का कारण आपने नहीं बताया। धर्माराव, फिर कहीं बताऊंगा। कुमार स्वामी, आपने कहा कि भगवान एक है। धर्माराव, मैंने नहीं कहा, तुम्हारे ईसाई अध्यापकों ने कहा है। कुमार स्वामी, आपने ही तो कहा अभी अभी। धर्माराव, भगवान भगवान कहना सामान्योक्ति है, वह किसी विशेष ज्ञान का परिचायक नहीं। जैसे ईसाई लोग भगवान कहते हैं वह हो ही नहीं सकता। भगवान पुलिंगवाचक है, अर्थात उसकी कोई मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति का संबंध द्रव्य से है, द्रव्य में गुण है, द्रव्य और गुण सारी आकृतियां नश्वर होती हैं। भगवान द्रव्य और गुण से समन्वित हो तो उसका नाश हो जाता है। कुमार स्वामी, फिर भगवान क्या है? धर्माराव, मैं क्या जानूं? उनसे पूछो जो भगवान भगवान की रट लगाते हैं। कुमार स्वामी, मतलब हुआ कि द्रव्य और गुण की आकृतियां नष्ट हो जाती हैं, 10 आकृतियों का नाश होता है, परंतु उन सब में एक आकृति अनुस्यूत चली आती है, वही नित्य है। ऐसे नित्य द्रव्य, गुण तथा आकार वाले को भगवान कहते हैं। धर्माराव, महाभाष्ट्र में पतंजलि ने शब्दार्थ निर्णय करते हुए यही कहा है। कुटस्थ और अविचल वस्तुओं में शब्दार्थ अनुस्यूत होता है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत भी इससे मिलता जुलता है, परंतु द्रव्य गुण तथा आकार नष्ट हो जाते हैं। इन सबको यदि जन्य माना जाए तो उनका एक जनक पदार्थ होना चाहिए। यदि भगवान एक हो तो प्रधान वस्तु एक ही ठहरती है। वह वस्तु द्रव्य गुण आदि नहीं है, उन्हें वह उच्च पद प्राप्त नहीं है, अतएव वह परम वस्तु द्रव्य गुण आदि से भिन्न है। भगवान ऐसा नहीं हो सकता। उस परम वस्तु को हमारे मनुष्यों ने ब्रह्म कहा, यह तत्व किसके पल्ले पड़ेगा? भगवान के नाम पर बगले बजाने वाले इसे नहीं समझ सकेंगे। उनमें जिज्ञासा नहीं, धर्म भी नहीं, वे सदाचार का अभिनय भर करते हैं। कुमार स्वामी घर लौटा। छोटे धर्मराव की आयु 2 बरस की हो चुकी थी। पिता के घर आते ही वह उसके पास जा पहुंचा। कुमार स्वामी अपने बच्चे की देखरेख नहीं करता था। उसकी इस उपेक्षा पर श्यामला बहुत बिगड़ती थी। आज बच्चा कुमार स्वामी के पास आया तो उसने उसे गोद न लेते हुए कहा, ओहो, आज कोई नई बात है? श्यामला, बच्चे पसंद नहीं है तो उन्हें जन्म ही क्यों देते हो? कुमार स्वामी, खुद चोरी करके मुझ पर दोष लगा रही हो? कुमार स्वामी हंस पड़ा। श्यामला भी हंसी। उस हंसी में कुमार स्वामी ने बच्चे को ले लिया। कुमार स्वामी, आज मंगम्मा आई थी क्या? श्यामला, अब आप कहाँ से आ रहे हैं? कुमार स्वामी, मास्टर जी के घर गया था। श्यामला, सुना है कि वेणुगोपाल स्वामी का कल्याणोत्सव होने वाला है। कुमार स्वामी, अभी 5-6 महीने बाकी हैं, तुमसे किसने कहा? श्यामला, मंगम्मा कह रही थी, अब तक यही थी। कुमार स्वामी, मंगम्मा का कल्याणोत्सव से क्या संबंध है? श्यामला, क्या संबंध है? ऐसा लगता है कि सारा उत्सव मंगम्मा के ही हाथों होने वाला है। कुमार स्वामी, क्या क्या होने वाला है? श्यामला, वह कहती थी कि उत्सव में वेणुगोपाल स्वामी के लिए 10-11 हजार रुपये खर्च करके जो चाहेगी करेगी। कुमार स्वामी, परंतु स्वामी के धर्मकर्ता जमींदार हैं या मंगम्मा? जमींदार उसे वह सब करने नहीं देंगे। श्यामला, बच्चे को नींद आ रही है, दे दीजिए। दूसरे दिन कुमार स्वामी मंगम्मा के घर गया। बाली को कुर्ता पहनाया गया, छोटी सी अंग्रेजी टोपी पहनाई गई। कुमार स्वामी बोला, बाली का लिबास तो अच्छा है, पर नेक टाई क्यों नहीं बांधी गई? यह कहकर उसने बाली के गले में एक कपड़े की कतरन बांध दी। मंगम्मा कहने लगी, बेचारा मर जाएगा। कुमार स्वामी बोला, मर जाएगा तो इसकी तस्वीर मेज पर रखी जाएगी। मंगम्मा, मैंने तुम्हें कई बार मना किया, पर तुम मेरे घर आए बिना नहीं रहते। आते हो तो फिर तुम्हारी जबान बंद नहीं रहती। कुमार स्वामी, लाज लज्जा मन में न रहे तो लोगों के कहने सुनने का क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं होता। लाज लज्जा से मुक्त होने के 2 उपाय हैं। एक है मन को परिपक्व बनाकर अपनी योग्यता बढ़ाना। दूसरा उपाय है मन को अत्यंत कलुषित बनाकर ऐसी स्थिति में पहुंचना कि उस पर किसी का कोई प्रभाव न हो। मन को पाप में डुबो डुबो कर कहाँ तक ले जाओगी? एक समय आएगा जबकि आप ही आप वैराग्य उत्पन्न होगा। हमारे केशव जी का यही सिद्धांत है, प्रेम ही भगवान है। सब प्राणियों के प्रति दया होनी चाहिए। ऐसे दयावान व्यक्ति में स्वार्थ कहाँ से आएगा? सब प्राणियों में समानता देखना ही मोक्ष का लक्षण है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि यह कार्य इंद्रियों को नियंत्रित करके करना चाहिए। केशव जी के अनुयायी कहते हैं कि इंद्रियों को प्रवृत्ति में डुबो कर यह कार्य करना चाहिए। नियंत्रित करना एक निश्चित मार्ग है। प्रवृत्ति करने से पता नहीं कहाँ जाकर फल मिलेगा। मंगम्मा, कहाँ? कुमार स्वामी, मंगम्मा की ओर संकेत करके, यहाँ मिलेगा। तुम्हें पसंद न हो तो बाली की ओर संकेत करके, वहाँ मिलेगा। मंगम्मा, हम दोनों को तुम एक ही श्रेणी में गिना चुके हो। कुमार स्वामी, किसे किस श्रेणी में गिनाना है यह बात मेरी अपेक्षा वेणुगोपाल शतक के रचयिता को ज़्यादा मालूम है। पाद टिप्पणी में, तेलुगु का एक प्रसिद्ध शतक काव्य है जिसमें सामाजिक कुरीतियों की व्यंग्यपूर्ण आलोचना की गई है। मंगम्मा, तुमने वह कविता मुझे सुनाने का वचन दिया था। कुमार स्वामी, तुम्हें सुनाने की मुसीबत में मैं क्यों पढ़ूंगा भला? मिशनरी लोग मुझे मजे में 125 का वेतन दे रहे हैं, तब मैं तुम्हारी सेवा क्यों करने लगा? तिस पर स्त्रियों की सेवा? बाली किचकिच आवाज करके हंसने लगा। कुमार स्वामी बोला, यह निगोड़ा क्यों हंसता है? इसमें मुझसे अधिक क्या 4 चांद लगे हैं? कॉफी तक नहीं पी सकता। मंगम्मा, तुम बात बात में बाली को गाली न दो। कुमार स्वामी, आज इसका मुंह देखकर ही मेरे बदन में आग लग रही है। इसके सिर पर अंग्रेजी टोपी क्यों है? टोपी की इज्जत जाती रही। मंगम्मा, तुम्हारी छुट्टी और कितने दिन की बाकी है? कुमार स्वामी, झमेला सा लग रहा है क्या? मंगम्मा, जो चाहे कह डालो, मुझे झमेला क्यों लगेगा? कुमार स्वामी, यही तो झंझट है। इस तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो तुम्हारी नाक पर गुस्सा बैठा रहता है। इस बाली को कुछ कहना चाहूँ तो इसके नाक ही नहीं है। कुमार स्वामी गाने लगा, इसके नाक ही नहीं है। मंगम्मा, मैं भीतर जा रही हूँ। कुमार स्वामी, मैं क्या भीतर नहीं जा सकता? दोनों जाकर दीवान खाने में बैठ गए। चंगल राव आ पहुंचा, बोला, कुमार स्वामी जी, आपने देखा? कुमार स्वामी, चंगल राव तुमने सुना? मंगम्मा, उन्होंने देखा क्या, उन्होंने सुना क्या? दोनों जाकर दीवान खाने में बैठ गए। चंगल राव आ पहुंचा, बोला, कुमार स्वामी जी, आपने देखा? कुमार स्वामी, चंगल राव तुमने सुना? मंगम्मा, उन्होंने देखा क्या, इन्होंने सुना क्या? चंगल राव, क्या? यही कि आप दोनों के बारे में लड़कों ने दीवारों पर कुछ लिखा है। कुमार स्वामी, अच्छा किया है। मंगम्मा के भाग खुले हैं। मंगम्मा, वे दुष्ट जो चाहते हैं कह जाते हैं। तुम हो कि जहाँ रोना है वहाँ हंसने लगते हो। ताल वृक्ष के नीचे तुम दूध भी पियो तो लोग उसे ताड़ी ही कहेंगे। कुमार स्वामी, मैं न तो किसी ताल वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ और न दूध ही पिया, कोई ताड़ी समझे तो मैं क्यों घबराऊँ? मंगम्मा, तुम्हारी हवाक चतुरता मेरी सूरत जैसी है। कुमार स्वामी, तुम्हारी सूरत के क्या कहने, उसने 80,000 रुपये कमाए हैं। मंगम्मा, सच बताओ, लड़कों ने दीवारों पर बुरी बातें लिखी, यह तुम्हें बुरा नहीं लगता? कुमार स्वामी, पगली मंगम्मा, संसार तुम पर उपकार कर रहा है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं, वे तुम्हारे पापों में हिस्सा बटा रहे हैं। तुम्हारे पाप आज कई लोगों में बट रहे हैं, तुम्हारे सुदिन आए जान पड़ते हैं। मुझे तो तुम में कोई बुराई नहीं दिखाई देती, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। 5-6 महीने में कौन जानता है तुम क्या बनोगी? मंगम्मा, भैया, अनजाने में यदि कोई पाप कर बैठे तो भी उसे फल भोगना ही पड़ता है। कुमार स्वामी, मान लो कि अनजाने में बच्चे ने आग को छू लिया, तो उसका हाथ जलेगा या नहीं? मंगम्मा, तुम इतने बुद्धिमान कैसे बने? कुमार स्वामी, चंद्रमा में इतनी कांति कैसे आई? मंगम्मा, तुम हमेशा टेढ़ी बात ही करते हो, सीधी बात नहीं कर सकते? कुमार स्वामी, क्या अब भी पीछे के दरवाजे की बात चली है? मंगम्मा, मेरा मतलब वह नहीं, तुम्हारा आशय सीधा होता है, परंतु किसी न किसी अलंकार के बिना तुम नहीं बोलते। टेढ़ी बात का अर्थ होता है वक्रोक्ति। कुमार स्वामी, इस आशय का एक प्रशंसा पत्र लिखकर मुझे दे दो, यह नौकरी जाएगी तो और कहीं कर लूँगा। मंगम्मा, मुझ जैसी को किसी ने नमस्कार किया तो आशीर्वाद मिला कि मेरी ही तरह जीते रहो। कुमार स्वामी, साफ साफ क्यों नहीं कहती, मुझ जैसी को क्यों कहती हो? मंगम्मा, चंगल राव बाहर लड़के शायद बाली को पत्थर मार रहे हैं, वह चीख रहा है, जाकर उसे ले आओ। कुमार स्वामी, यह बाली तुम्हें मिला है या तुमने इसे खरीदा? मंगम्मा, बाली की कहानी मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ। कुमार स्वामी, मुझे याद नहीं। मंगम्मा, नहीं नहीं, यह तुम्हारी कोई चाल है। कुमार स्वामी, चाल नहीं, ढाल है। मंगम्मा, कहते हैं कि एक मफसलमान व्यक्ति को उसे उसकी माँ के साथ ले आया था। उसकी माँ को बंदर का खेल खेलना आता था। यह माँ के साथ यूं ही फिर रहा था। चंगल राव ने उसे उसकी माँ से कुछ दूर जाने देकर कोई दवा खिलाई। पता नहीं वह कैसी दवा थी, उसे खाने वाला कोई भी जानवर खिलाने वाले के पीछे पीछे आ जाता है। थोड़ी देर बाद उस मफसलमान ने देखा तो बंदर का बच्चा गायब था। चंगल राव उसे विजयवाड़ा से यहाँ ले आया है। कुमार स्वामी, फिर चंगल राव की अपेक्षा यह तुमसे क्यों अधिक खेल मिल गया है? मंगम्मा, कहते हैं उस दवा का असर केवल 4 दिन तक रहता है। कुमार स्वामी, चंगल राव इस बंदर को क्यों ले आया? मंगम्मा, यूं ही। कुमार स्वामी, बेचारे की माँ कितनी रो रही होगी। निर्दयी केवल अपना लाभ देखते हैं, उस वस्तु या मनुष्य से वंचित होने वाले व्यक्ति का दुख नहीं देखते। बेचारी वह बंदरिया शायद अब तक मर भी गई हो। मंगम्मा, तुम्हारा मन बड़ा विचित्र है, रह रह कर स्वर्ग में क्यों भ्रमण करने लगता है? कुमार स्वामी, मेरी बात तुम्हारी समझ में आई? मंगम्मा, तुमने मेरी निंदा नहीं की, दोष था चंगल राव का। कुमार स्वामी, बंदर बिगड़ गया है। मंगम्मा, हम दोनों एक साथ सुधरेंगे। कुमार स्वामी, मैंने उस अर्थ में नहीं कहा। मंगम्मा, तुम्हें भी थोड़ा पुण्य अवश्य मिलेगा। कुमार स्वामी, पुण्य न कहो, फल कहो। मंगम्मा, हाँ, तुम्हें आगे बहुत फलना फूलना है। छुट्टियां समाप्त हुई, कॉलेज खुल गए। कुमार स्वामी एक पुस्तक से पाठ पढ़ा रहा था। उस रचना में औचित्य नहीं था, कोई गुण नहीं था, शब्द अर्थ तथा वाक्य संबंधी अनेक दोष थे। कुमार स्वामी ने बेजार होकर पुस्तक मेज पर रख दी और कहने लगा, जो पुस्तक लिखता है वह पंडित हो सकता है, परंतु औचित्य केवल महाकवि ही जान सकते हैं। जिस रचना में औचित्य न हो उसे जला देनी चाहिए। जो अधिकारी पाठ्य ग्रंथों का निर्णय करते हैं उन्हें प्रसन्न कर लेने पर रद्दी से रद्दी पुस्तक ही पाठ्य पुस्तक बन जाती है। पुस्तक कोई पढ़ता ही नहीं। कहते हैं कि यह पुस्तक अमुक शास्त्री जी की लिखी हुई है, वे बड़े भले मानस हैं, बेचारों की कुछ आमदनी हो जाएगी, शास्त्री जी खुश होंगे। पाठ्य ग्रंथों का मामला व्यापार से भी गया बीता है। दोष दिखाना खुद दोष है, आखिर इतनी पुस्तकें क्यों? तुम लोग 6 बरस में तेलुगु पढ़ने आए हो, 4 वर्ष तक आगे पढ़ने वाले हो, अब भी संधि के नियम नहीं जानते। परसों मैं कीचक वध का पाठ पढ़ा रहा था कि एक छात्र ने उठकर प्रश्न किया कि पांडव विराट नगर में क्यों रहे। 10 पुस्तकें पढ़ने का आग्रह तो करते हैं, परंतु इस बात की किसी को चिंता नहीं कि कोई पढ़ भी रहा है या नहीं। परीक्षा में सभी उत्तीर्ण हो जाते हैं। किसी नई कविता का अर्थ पूछो तो कोई नहीं बता सकता, केवल पाठ्य पुस्तकें बदलती रहती हैं। परंतु प्रश्न पत्रों का ढंग देखो तो FA और MA में कोई अंतर नहीं। अध्यापकों में भी व्याकरण जानने वाले कितने हैं, 1-2 के रहने से क्या होता है? कविता का अन्वय, बहुशब्दार्थ, परंपरा का ब्यौरा, पुराण कथा आदि का परिचय दिए बिना केवल व्याकरण, व्युत्पत्ति आदि सिखाने से क्या हासिल? इतने बेकार के ग्रंथ पढ़ाने के बदले एक सदग्रंथ पढ़ाना पर्याप्त है। तेलुगु का सिलेबस अंग्रेजी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया जाता है। वहाँ पद्य प्रबंध हो तो यहाँ भी पद्य प्रबंध रखा जाता है। वहाँ नाटक हो तो यहाँ भी नाटक। वहाँ नॉन डिटेल्ड गद्य पुस्तक हो तो यहाँ भी वही। यह कोई नहीं सोचता कि उस भाषा की परंपरा क्या है और किसी भाषा को कैसे पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों को भाषा का ज्ञान हो न हो, पुस्तकों की बिक्री से पैसा मिल जाए तो काफ़ी है। परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने में पैसा मिलता है, परीक्षा पत्रों को जांचने में पैसा मिलता है। जितनी पुस्तकें अधिक होंगी परीक्षा पत्र में भी उतने ही अधिक होंगे। यदि विश्वविद्यालय में आंध्र भाषा का शिक्षण सुधारना हो तो हाई स्कूलों की शिक्षा प्रणाली भी सुधारनी चाहिए। भर्ती के अनेक पाठ्य ग्रंथों को निकाल देना आवश्यक है। जो अध्यापक प्रश्न पत्र देता है वह अपने ढंग से देता है, जो विद्यार्थी उसके पास पढ़े हुए होते हैं उन्हें लाभ होता है, अन्य विद्यार्थियों का घाटा होता है। स्कूलों की परीक्षाओं में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, परंतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में कई अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जो हो, यदि पाठ्य पुस्तकें अच्छी हों तो ज्यों की त्यों पढ़ाई चल सकती है। बैल बेचने वाले बंजारे अपने साथ ज्वार की रोटी बना लाते हैं, घर से निकलते समय रोटी बनाकर गठरी में बांध ले जाते हैं, महीनों बीत जाने पर भी उसी गठरी से प्रतिदिन रोटी निकाल कर खाते हैं और पानी पी लेते हैं, यही उनका भोजन है। हमारी पाठ्य पुस्तकें भी उन्हीं रोटियों की तरह हैं, उन्हें पढ़ाने वाले हम बंजारों जैसे बन गए हैं। बंजारे बैल बेच कर पैसा कमाते हैं, हम अपनी परीक्षाओं को बेच कर नौकरी कमाते हैं। कुमार स्वामी को पता न चला, परंतु पर्दे के पीछे पीछे उसके भवितव्य की नाव भावना फंसने लगी। प्रश्न यह उठा कि उसे नौकरी से कब अलग किया जाए, वर्ष के अंत में या अभी? अभी निकालेंगे तो वह दावा कर सकता है, अतएव उसे वर्ष के अंत में निकालने का निश्चय हुआ। निकालने के लिए कारण ढूंढे गए। वह एक बदनाम स्त्री मंगम्मा के घर आता जाता है, उसे देखकर विद्यार्थी आदर्श विमुख हो रहे हैं। उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली का कट्टर विरोध किया है, फलतः विद्यार्थियों में शिक्षा प्रणाली के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है और उनके विकास में बाधा पड़ रही है। उसने ईसाई धर्म की निंदा की है, ईसाई धर्म सारे धर्मों में उत्कृष्ट है, जनतांत्रिक विचार उसी धर्म में विद्यमान है, अतएव कुमार स्वामी उदात्त विचारों का विरोधी है, विकास का विरोधी है, उन्नति का शत्रु है, मनोविकास का विरोधी है। कुमार स्वामी ने आंखें मूंद कर ज्यों त्यों 10-15 दिन बिताए। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले उसे अलग करने का 3 महीने का नोटिस दिया गया। वह इटसन साहब से मिलने गया, साहब ने उसका बड़ा आदर किया, यही सभ्यता का लक्षण है। कुमार स्वामी, मुझे नौकरी से अलग कर देने का नोटिस मिला है। इटसन, मुझे बड़ा खेद है, धन अभाव के कारण आपको निकालना पड़ रहा है। कुमार स्वामी, एक अध्यापक को कम करके आप तेलुगु का अध्यापन ठीक नहीं चला पाएंगे। मैं अपनी नौकरी की बात नहीं करता, चिदानंद शास्त्री नामक एक पंडित हैं, तर्क व्याकरण और साहित्य में निष्णात हैं, काशी में 14 वर्ष तक अध्यापन कर आए हैं, उन्हें नियुक्त कीजिएगा। इटसन, वे विद्वान परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। कुमार स्वामी, विश्वविद्यालय में जितने उभय भाषा प्रवीण तैयार हुए हैं और जिन पंडितों ने उनकी परीक्षा ली है, वे सब मिलकर भी चिदानंद शास्त्री की बराबरी नहीं कर सकते। इटसन, विश्वविद्यालय की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना यह आदमी हमारे काम का नहीं। कुमार स्वामी, हाँ हाँ, मैं भूल गया, आपके कॉलेजों में आपके अनुरूप लोगों का रहना आवश्यक है। आपका प्रयत्न यही है कि संस्कृत और आंध्र साहित्य का सर्वनाश कैसे हो, इसके अनुरूप पंडितों को ही आप ले सकते हैं। ऐसे लोग ही विश्वविद्यालय के कारखानों में तैयार होते हैं। विद्वान परीक्षा के नाम पर देश के महान पंडितों को आपने समाप्त कर दिया। कितने ही प्रकांड पंडित आज कंगाल बने हुए हैं, जमींदार लोग निकम्मे आलसी और काम वासना के वश में हुए जा रहे हैं। वे पंडितों का आदर नहीं करते। अतीत के वे दिन समाप्त हुए, विद्वान परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना नौकरी नहीं मिलती, अतएव सब लोग इसी ओछी पढ़ाई के पीछे दौड़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई आई और तेलुगु भाषा मर गई, देशी भाषाओं का नाश हो गया। 10 बरस के बाद देश में एक ही भाष्यांत व्याकरण तार्किक अथवा मीमांसक बचा रहे तो शपथ ले लीजिए, मिल्टन का एरियो पेजिटिगा आपने पढ़ा ही होगा, ग्रंथों और विद्याओं का हनन मानव हत्या से ही भयानक है। इटसन, आप बड़े जोश से बोलते हैं, आपका कहना सच है, परंतु मैं उन शास्त्री जी को नौकरी नहीं दे सकता। कुमार स्वामी, मैंने आशा नहीं की थी कि आप उन्हें नौकरी देंगे। मैं जानता हूं आप मुझे नौकरी से क्यों अलग कर रहे हैं, एक दोषपूर्ण प्रणाली अपनाकर उसका समर्थन आप मुझसे करवाना चाहते हैं। इटसन, आप ठीक कहते हैं, पर मैं क्या करूं, उस प्रणाली को बदलना क्या मेरे हाथ में है? कुमार स्वामी, आप सब अधिकारी यही कहते हैं, अलग अलग सोचने लगते हैं तो ठीक सोचते हैं, परंतु सब मिलकर बैठते हैं तो भेड़िया धसान पुरानी लीक पर ही चले जाते हैं। संसार में लोग मन ही मन कितनी ही बुरी कल्पनाएँ करते होंगे, परंतु सबके मिलते ही बड़ी भलमनसी का ढोंग करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। अपने घरों में सभी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु सीनेट की सभा में पहुंचते ही फिर से माया जाल में पड़ जाते हैं। इटसन, आप उम्र में छोटे हैं, अपने सारे विचारों को इस गर्मजोशी से प्रकट नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी व्यक्तिगत उन्नति में बाधा पड़ सकती है। कुमार स्वामी। हाय, इसी वंचना के कारण देश आज प्रलय की ओर बढ़ रहा है। मुझ जैसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहना चाहिए, जानबूझकर छल कैसे करूं? मुझे आपका 3 महीने का वेतन नहीं चाहिए, आज रुपए भेजेंगे तो मैं लौटा दूंगा, यह पाप का पैसा मैं क्यों खाऊं? मैं सोचता था कि आप यह सब अनजाने में करते होंगे, सोच समझ कर इतना छल नहीं करना चाहिए। हम हिंदू लोग जबान से आध्यात्मिक बातें करते हैं, परंतु भीतर नीरे नास्तिक होते हैं। देखता हूँ कि इस मामले में आप लोग हमसे बहुत आगे हैं, अब आज्ञा दीजिए, क्षमा कीजिए। मुझ जैसा व्यक्ति अपने मन की व्यथा को छिपा नहीं सकता, छिपाना चाहे तो व्यथा आग बनकर उसके भीतर भीतर झुलसा देती है, प्रकट करने पर वही आग बाहर उसकी आजीविका को जला देती है। भीतर जलने से वह दुर्गति को प्राप्त होता है, अतएव उस आग को बाहर लाकर अपनी आजीविका की आहुति देना है उसके लिए अधिक श्रेयस्कर होता है। कुमार स्वामी चला गया। इटसन साहब सोचने लगे, ऐसे अकलमश स्वभाव वालों का इस संसार में कोई स्थान नहीं, इनका मर जाना ही अच्छा है, कष्ट सहते रहना ही ठीक है। जहाँ अधिकार हो वहाँ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं चल सकता, कृत्रिमता के बिना संसार चल ही कैसे सकता? कृत्रिमता न हो तो व्यवहार की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। चैत्र की पूर्णिमा आई, कुमार स्वामी धर्माराव से मिलने गया। धर्माराव बोला, भाई कुमार स्वामी, मैंने तुम्हें अतिवाद नहीं सिखाया था, केवल कुछ सिद्धांत सिखाए थे। सुना है कि उन सिद्धांतों के प्रतिपादन में तुम बहुत आग उगलने लगे हो। सच्ची बात को भी तीखे ढंग से कहो तो यह संसार नहीं मानता। यही कारण है कि राजा की भांति शासन चलाने वाले, वेदों के स्थान पर पत्नी की भांति मधुर वचनों से समझाने वाले काव्यों की सृष्टि हमारे साहित्यकारों ने की। किसी भी विषय का बोध सौम्य वचनों से करना चाहिए। तुम्हें नौकरी करके जीना है, ऐसा जोश तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमने इटसन साहब को गाली क्यों दी? कॉलेज के कुछ अध्यापकों को मारने क्यों दौड़े? कुमार स्वामी दांत पीसता हुआ, किसने कहा आपसे? चलिए इटसन के पास चलें, यदि मैंने उसे गाली दी हो तो अभी गोपाल स्वामी के मंदिर की चोटी पर से कूद कर मर जाऊंगा। यदि बात झूठी है तो जिसने आपसे कहा उसे चप्पल से मारूंगा। धर्माराव, भाई भलमनसी का इतना आग्रह भी किस काम का? झूठ और दुर्जनता को सहन करना भी सीखो, संसार बात का बतंगड़ बना देता है। क्या करोगे, आवेश प्रकट करोगे तो अंत में पागल कहे जाओगे। कोई नहीं कहेगा कि परमार्थ तुम्हें ऐसा करने के लिए विवश कर रहा है। लोग कहेंगे कि तुम दुष्ट हो। संसार में जीना है तो नौकरी, मन और अंतरात्मा, इन सबको अलग अलग निभाना होगा। व्यवहार और अंतरात्मा ये अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों को निभाओगे तो सुख पाओगे। निष्कलुष आत्मा और स्वतंत्र जीवन दोनों पाने वाले परम योगी होते हैं, उनके मार्ग से अड़चन नहीं होती। जो लोग संसार के मार्ग को सब कुछ मानते हैं उनके सामने भी कोई अड़चन नहीं, अड़चन है तो तुम जैसे बीच वालों के सामने। कुमार स्वामी, आप ठीक कहते हैं, अकारण आवेश प्रकट करने से कोई लाभ नहीं, कोई और नौकरी मिले तो ऐसा नहीं करूँगा। धर्माराव, अब तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। उन सब का एक ही गुट है, तुम जहाँ नौकरी ढूंढने जाओगे वहाँ इटसन का प्रशंसा पत्र पूंछ बनकर तुम्हारा पीछा करेगा। न्याय का यही कठिन नियम है, ह्यूगो के उपन्यास जिन वाल्गीन में ही वर्णित है। पता नहीं ह्यूगो का कोमल मन इस कठोर नियम के कारण कितना तड़पा होगा। कई लोग बहुत दया की रट लगाते हैं, किसी गलत नियम का आसरा लेकर लोगों की आजीविका को नष्ट करना कहाँ की दया है। कुमार स्वामी, इन निकम्मी बातों को रहने दीजिए, यह तो बताइए कि स्वामी का कल्याणोत्सव कब होगा। धर्माराव, ठीक 1 महीना रह गया है। कुमार स्वामी, सुना है कि उत्सव के समय पादरी लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध भाषण देने वाले हैं, केशव जी के अनुयायी भी उनके साथ मिलेंगे। धर्माराव, हो सकता है उत्सव मंदिर में होगा और भाषण कॉलेज के हॉल में। कुमार स्वामी, उन भाषणों से हमारे धर्म की हानि न होगी? धर्माराव, तुम्हारे धर्म की या मेरे धर्म की? कुमार स्वामी, हमारे धर्म की हानि होगी, जो अज्ञानी है उनके धर्म की। धर्माराव, अज्ञानियों के धर्म की तो सदा ही हानि हुआ करती है, हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, जो लोग दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हुए भगवान का ढोंग रचते हैं उनकी आत्मच्युति होकर रहती है। उनका धर्म दुष्ट कर्म में ही आता है, काम आता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के विकास में नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर अच्छा काम नहीं करता वह सांप जैसा होता है, सांप की 2 जीभें होती हैं, ऐसे व्यक्ति का आचरण भी दोहरा होता है। कुमार स्वामी, सुना है कि नागेश्वर राव ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक पुस्तक लिखी है जिसकी 10,000 प्रतियां छापी जाएंगी और कल्याणोत्सव के समय लोगों में बांटी जाएंगी। धर्माराव, तुम इन सब बातों को लेकर परेशान क्यों हो रहे हो? जो लोग तर्क नहीं जानते उनकी दृष्टि में मूर्ति पूजा अच्छी नहीं। जाने दो। कुमार स्वामी घर लौटा। श्यामला बोली, आपसे मिलने मंगम्मा आई थी। कुमार स्वामी, उसी के कारण मेरी नौकरी छूट गई है। श्यामला, नहीं, आपकी जबान के कारण छूटी है। कुमार स्वामी, तुम ही मास्टर जी की चेली बन जाओ। मंगम्मा, श्यामला मंगम्मा के घर हो आइए। कुमार स्वामी, मुझे भूख लगी है। श्यामला, अभी रसोई नहीं बनी है। कुमार स्वामी, अब 11 बजे हैं। श्यामला, वैदिक ब्राह्मण 12 बजे से पहले भोजन नहीं करते। कुमार स्वामी, वैदिक ब्राह्मण कौन है? श्यामला, आप नहीं हैं? कुमार स्वामी, तुमसे किसने कहा? श्यामला, मंगम्मा ने। कुमार स्वामी मंगम्मा के घर गया। मंगम्मा बोली, कल्याणोत्सव में केवल 20 दिन रह गए हैं। कुमार स्वामी, नहीं, 1 महीना बाकी है। मंगम्मा, 10 दिन तक तो उत्सव ही चलता रहेगा। कुमार स्वामी, कल्याणोत्सव के समय मूर्ति पूजा के विरुद्ध भाषण होने वाले हैं। मंगम्मा, मूर्ति पूजा कौन नहीं करता? क्या मूर्ति केवल पत्थर से बनाई जाती है? मूर्ति का अर्थ है प्रतीक। ईसाइयों का क्रॉस प्रतीक नहीं है, चित्र प्रतीक नहीं है, प्रतिमाएं प्रतीक नहीं है। जिनका ज्ञान मूर्ति से आगे नहीं बढ़ता, वे मूर्तियों की निंदा करते हैं। हिंदू मूर्तियों की आराधना नहीं करते, मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाते हैं। मूर्ति के नीचे बीजाक्षर की संपुटी होती है। शब्द, आकृति और गुण, इन तीनों से समान शक्ति लेकर उस शक्ति की प्रतिष्ठा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। किसी द्रव्य की आराधना करने वाला प्राण रहित और शक्ति रहित मूर्ति का आराधक कहलाता है। जो सृष्टि का मर्म जानता हुआ समझ सकता है कौन सी वस्तु मूर्ति है और कौन सी नहीं। मैं उपनिषदों का उल्लेख नहीं करना चाहता, अन्य धर्मों का ज्ञान पहले ही जाता रहा। खाली क्रॉस को ढोने से क्या होता है? क्रॉस एक भावना का प्रतीक है, परंतु उस भावना का प्रतीक से कोई संबंध नहीं। ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया था, इसलिए क्रॉस ईसा मसीह का प्रतीक कैसे बन सकता है? किसी भाव का प्रतीक शब्द है, शब्द का सार बीजाक्षर में होता है, उस अक्षर के अनुरूप आकृति है, यह रूप कल्पना है। ईसाइयों के क्रॉस में रूप कल्पना नहीं है। यदि ईसा मसीह सब मनुष्यों के अभय प्रदाता हैं तो उन्हें अभय मुद्रा धारण करनी चाहिए, तदनुरूप उनकी रूप कल्पना होनी चाहिए। जो पंचभूत नहीं है उसी से पंचभूत उत्पन्न होते हैं। ये पंचभूत जिस भाव के द्वारा एक दूसरे में समाये हुए हैं उसे समझ कर ही इस मूल तत्व को जाना जा सकता है। कुमार स्वामी भौचक होकर मंगम्मा की ओर ताकता रहा। मंगम्मा ने पूछा, मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? कुमार स्वामी, यह सब तुमने कब सीखा? मंगम्मा, वह एक रहस्य है, तुम्हें बताऊंगी पर किसी और से न कहना। यदि कहोगे भी तो कोई बात नहीं, 1 महीने में क्या बिगड़ने वाला है? कुमार स्वामी, बताओ मैं भी जानूँ। मंगम्मा, प्रतिदिन आधी रात को मैं धर्मराव की शिष्या बन जाती हूँ, इसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। कुमार स्वामी, बाली को देखो, आंखें मूंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा है, आखिर तूने बंदर का संस्कार कर ही डाला। हवा में पांचजन्य जैसी धीमी आवाज़ आई, हवा छतों के बाँसों में घुसकर रमकने लगी, बाली उस आवाज़ की तरह आवाज़ करने लगा। मंगम्मा ने बंदर को अपने पास खींच लिया। कुमार स्वामी की आँखें डबडबा आईं।